बीबीसी और आकाशवाणी प्रस्तुत करते हैं चलो रियो।
आज के अंक में जब 1932 लॉस एंजलिस ओलंपिक में भारत ने दिखाया एम्स्टर्डम में उनकी जीत नहीं थी तुक्का। रूप सिंह का भी जलवा कम नहीं था ध्यानचंद से।
32 का ओलंपिक जो चाचा रूप सिंह ने खेला है वहाँ पर अमेरिका में, उसमें गोल मैक्सिमम चाचा रूप सिंह के हुए, ध्यानचंद जी के नहीं हुए, रूप सिंह साहब के गोल हुए।
बताएंगे किस तरह 4 स्वर्ण पदक जीतकर जेसी ओवेंस ने किया था बर्लिन ओलंपिक अपने नाम।
Many times during the course of his various competitions, you could hear the chant through the stands of thousands of people raising their voices and repeating in unison, "Ovens, Ovens, Ovens."
और मिलवाएंगे रियो ओलंपिक में कुश्ती में भारत की बड़ी उम्मीद योगेश्वर दत्त से। चलो रियो में अभिवादन स्वीकार करिए रिहान फदल का।
Deep in your soul. In the strong, determined will, there's a miracle to behold when you believe in your mind and in your heart.
ओलंपिक मंच पर अपना सब कुछ झोंक देने के इस जज्बे ने ही दुनिया के महानतम एथलीटों को हर कीमत पर इन खेलों में भाग लेने के लिए बाध्य किया है। पूरी दुनिया में आई मंदी और वॉल स्ट्रीट क्रैश भी भारतीय हॉकी टीम को लॉस एंजलिस पहुंचने से नहीं रोक सका। इन ओलंपिक खेलों में हॉकी में दुनिया की सिर्फ 3 टीमों ने भाग लिया था, मेजबान अमेरिका, जापान और भारत। टीम के चयन से पहले कोलकाता में एक प्रतियोगिता हुई थी जिसमें 1928 के कप्तान जयपाल सिंह को बंगाल की टीम तक से खेलने के लिए नहीं चुना गया। हालांकि वो समय कोलकाता में ही रह रहे थे और मोहन बगान हॉकी क्लब की कप्तानी कर रहे थे। ध्यानचंद के अलावा 1928 की टीम के सिर्फ 3 सदस्य 1932 की टीम में जगह बना पाए, एलन, पिनिगर और हेमंत। लाल शाह बुखारी को इस टीम का कप्तान बनाया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने 18 मार्च 1932 के अंक में लिखा,
बुखारी को कप्तान बनाने से कुछ निराशा हुई क्योंकि 1928 के फाइनल मैच में कप्तानी कर चुके पेनिगर ये मानकर चल रहे थे कि उन्हें ही कप्तान बनाया जाएगा। उन्होंने ये भी धमकी दी कि अगर उन्हें कप्तान नहीं बनाया गया तो वो टीम के साथ लॉस एंजलिस नहीं जाएंगे। उनको अंततः एक पत्रकार चार्ल्स न्यूहैम ने जाने के लिए मनाया। जयपाल सिंह को टीम से बाहर रखा गया, हालांकि वो अपने खर्चे पर लॉस एंजलिस जाने के लिए तैयार थे। उस समय भी हमेशा की तरह फेडरेशन के पास टीम को लॉस एंजलिस भेजने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे।
ध्यानचंद अपनी आत्मकथा गोल में लिखते हैं कि भारतीय टीम के लिए फंड जमा करने के अभियान में महात्मा गांधी को शामिल करने की असफल कोशिश की गई। चार्ल्स न्यूहैम ने महात्मा गांधी को पत्र लिखकर कहा कि वो भारतीय हॉकी टीम के लिए धन जुटाने में उनकी मदद करें। गांधी जी ने न्यूहैम के पत्र के जवाब में लिखा,
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुझे पता ही नहीं है कि हॉकी जैसा भी कोई खेल होता है। मैं इस बारे में भी निश्चित नहीं हूँ कि आम लोगों की इस खेल में रुचि है या नहीं। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका या भारत में हॉकी का कोई मैच नहीं देखा है। मुझे दुख है, मैं इस बारे में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता।
लेकिन इसके बावजूद भारतीय हॉकी फेडरेशन के प्रमुख एफ हेमन और पंकज गुप्ता के प्रयासों से इतना पैसा जोड़ लिया गया कि लॉस एंजलिस तक पहुंचने का भारतीय टीम का किराया निकल आए। ध्यानचंद ने अपनी आत्मकथा में लिखा,
सभी खिलाड़ी मैच के बाद मिलने वाला 2 पाउंड का अलाउंस छोड़ने को राजी हो गए ताकि टीम को पैसों की कोई कमी न रहे।
42 दिन के सफर के बाद जिस दिन भारतीय हॉकी टीम लॉस एंजलिस पहुंची, वहां के एक अखबार ने लिखा,
आज हॉकी के बादशाह पधार रहे हैं, उनकी बहुत सी बीवियां भी उनके साथ हैं, टीम में 2 शेर भी आ रहे हैं।
वास्तव में भारतीय दल में एकमात्र महिला टीम के मैनेजर गुरुदत्त सोंधी की पत्नी थी और टीम के 2 शेर थे, 2 सिंह, रूप और गुरमीत। मैच का उद्घाटन अमरीका के उपराष्ट्रपति चार्ल्स कर्टिस ने किया।
इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आई प्रोक्लेम ओपन द ओलंपिक गेम्स ऑफ लॉस एंजेलिस।
जॉर्ज कैलिन विल रिसाइट द ओलंपिक ओथ ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द एथलीट्स हु विल कंपीट हियर इन द नेक्स्ट 2 वीक्स।
वी स्वेयर दैट वी विल टेक पार्ट in the Olympic Games in loyal competition, respecting the regulations which govern them, and desirous of participating in them in the true spirit of sportsmanship.
And now the doves of peace. More than 5,000 doves are released and make their way skyward and symbolically spread their message to the world.
पहले मैच में भारत ने जापान को 11-1 से हराया। ध्यानचंद ने 4 गोल किए, जबकि रूप सिंह और गुरमीत ने 3-3 गोल। भारत नर्म मैदान पर खेलने का आदि नहीं था, वरना जापान पर और गोल होते। इस मैच के बाद भारत का आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि उसने अमेरिका के खिलाफ अगले मैच में टीम में कई परिवर्तन किए। बाद में हॉकी फेडरेशन के प्रमुख हेमन ने लिखा,
ऐसा इसलिए किया गया ताकि टीम के सभी 15 खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिल सके। ओलंपिक नियम कहते हैं कि उन्हीं खिलाड़ियों को पदक दिया जाएगा जिन्होंने प्रतियोगिता के कम से कम एक मैच में भाग लिया हो।
सबको उम्मीद थी कि भारत अमेरिका के खिलाफ जीतेगा, लेकिन किसी ने ये कल्पना नहीं की थी कि भारत औसतन हर 3 मिनट पर 1 गोल करेगा और जीत का अंतर होगा 24-1। ओलंपिक हॉकी में ये जीत का अब तक का सबसे बड़ा अंतर है, स्टेट्समैन ने अपने 13 अगस्त 1932 के अंक में लिखा।
भारतीय खिलाड़ियों ने गजब का स्टिक वर्क दिखाया। फॉरवर्डों का तालमेल देखते ही बनता था। हाफ बैक फॉरवर्डों की मदद के लिए अक्सर आगे आ जाते थे। फॉरवर्ड्स और हाफ के फ्लिक पास अमरीकियों के लिए नई चीज थे। कई बार तो वो खेलने के बजाय अपने फुर्तीले प्रतिद्वंदियों के खेल को निहारने लगते थे। रूप सिंह ने 12 गोल किए, जबकि ध्यानचंद ने 7 और गुरमीत ने 3 गोल स्कोर किए।
मैच के बाद अमरीकी टीम के एक सदस्य ने कहा कि बेहतर ये होता कि भारतीय खिलाड़ी बाएं हाथ से खेलते, तब शायद हम उनका मुकाबला कर पाते। अमरीका से कहीं दूर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन अखबार ने बाद में अपने 30 अप्रैल 1935 के अंक में भारत के इस अभियान के बारे में एक दिलचस्प खबर छापी।
भारत और अमरीका के बीच फाइनल 5,000 दर्शकों के सामने खेला गया था। उस समय चर्चा थी कि $1,000 की शर्त लगाई गई है कि ध्यानचंद 3 से ज्यादा गोल नहीं मार पाएंगे। अमरीकियों ने उनके पीछे 3 खिलाड़ी लगा रखे थे। इसके बावजूद ध्यानचंद 7 गोल मारने में सफल रहे।
मजेदार बात ये थी कि भारतीय अखबारों में ओलंपिक जीत को पहले पन्ने तो दूर, खेल समाचारों में भी काफी नीचे जगह दी गई थी, वो भी सिर्फ 1 कॉलम में। उस दिन की मुख्य खेल खबर थी भारत ने काउंटी मैच में सॉमरसेट को हराया। अमेरिका में 2 अभ्यास मैच खेलने के बाद इस टीम ने यूरोप के 4 देशों में 9 मैच और खेले। भारतीय हॉकी फेडरेशन के प्रमुख एफ हेमन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा,
हमारे दल के हर सदस्य ने इस दौरे का पूरा आनंद उठाया। हमारा इतना व्यस्त कार्यक्रम था कि बुडापेस्ट में मैच खेलने के लिए हम बस से सुबह 10:30 बजे वियना से रवाना हुए, 5 बजे बुडापेस्ट पहुंचे और मैच खेलकर सुबह 2 बजे वापस वियना पहुंच गए।
जर्मनी में ध्यानचंद इतने लोकप्रिय हुए कि उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी को जर्मन ध्यानचंद कहना शुरू कर दिया। प्राग में एक मैच के बाद एक युवती ने ध्यानचंद का चुम्बन लेने की कोशिश की। उन्होंने उस मुश्किल से यह कहकर पीछा छुड़ाया कि वो शादीशुदा शख्स हैं। बाद में ध्यानचंद ने लिखा कि ये उनकी नजर में भारत की सर्वश्रेष्ठ हॉकी टीम थी, 1936 की बर्लिन ओलंपिक टीम से भी बेहतर। चलो रियो, आप सुन रहे हैं बीबीसी और आकाशवाणी की पेशकश। और अब जिक्र उस हॉकी खिलाड़ी का जो हॉकी का जादूगर तो नहीं कहलाता था, लेकिन हॉकी कौशल में उसका भी कोई जवाब नहीं था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ध्यानचंद के छोटे भाई रूप सिंह की, जिन्होंने ध्यानचंद के साथ साथ लॉस एंजलिस और बर्लिन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। अपने जमाने में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लेफ्टिन रूप सिंह ने भारत के लिए ओलंपिक खेलों में ध्यानचंद से ज्यादा गोल किए हैं। गजब का स्टिक वर्क था उनका। उनके शॉट इतने तेज होते थे कि कई बार डर होता था कि उससे कोई घायल ना हो जाए। लॉस एंजलिस जाते हुए जब भारतीय टीम श्रीलंका में कुछ मैच खेलने के लिए रुकी, तो ध्यानचंद ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि रूप मुझसे बेहतर खिलाड़ी है। ध्यानचंद बिना वजह किसी की तारीफ करने के कायल नहीं थे। 1 महीने बाद लॉस एंजलिस ओलंपिक में ध्यानचंद के शब्द सही साबित हुए, जब भारत के स्कोर किए गए 35 गोलों में 13 गोल रूप सिंह ने किए और 12 ध्यानचंद ने। रूप सिंह के भतीजे और ध्यानचंद के बेटे अशोक कुमार, जो भारत की 1975 विश्व विजेता हॉकी टीम के सदस्य थे, बताते हैं।
स्टाइलिश, अच्छे खासे लंबे और खूबसूरत शरीर के मालिक, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कपड़े नहीं है, अमेरिका जा रहा हूँ, मेरे पास कपड़े नहीं है। उन दिनों में जैसे हालात थे वो तो थे ही घर के, लेकिन बाबूजी ने फिर अपने पैसों से उनको कपड़े खरीद दिए, एक सूट सिलाया, तो वो पहन के गए। सबसे बड़ी जो चीज थी चाचा रूप सिंह की, कि वो एक बड़े गोल स्कोरर, गोल में जो हिट मारते थे वो ऐसी थी जैसे बुलेट उस जमाने में जा रही हो गोल के अंदर। 32 का ओलंपिक जो चाचा रूप सिंह से खेला है वहां पर अमेरिका में, उसमें गोल उनके मैक्सिमम चाचा रूप सिंह के हुए, ध्यानचंद जी के नहीं हुए, रूप सिंह साहब के गोल हुए। इन दोनों के कॉम्बिनेशन की उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी खूबसूरत थी कि किस जगह पे बॉल आपस में लेनी है, देनी है, कहाँ गोल करना है, तो ये चीज रूप सिंह के साथ बहुत ज्यादा मुफीद थी, बहुत अच्छा सेट करते थे। 1932 का ओलंपिक डेफिनेटली चाचा रूप सिंह का ओलंपिक था, जिसमें उन्होंने अपने खेल से, कला कौशल से और हॉकी से अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सेकंड गोल्ड मेडल जीतकर हिंदुस्तान के लिए तहलका मचाया था।
1936 के बर्लिन ओलंपिक के फाइनल में रूप सिंह ने जर्मनी के खिलाफ पहला गोल किया था। इस मैच को भारत ने 8-1 से जीता था।
फर्स्ट हाफ तक सिर्फ एक गोल हिंदुस्तान की जर्मन के ऊपर हम कर पाए, और उसमें वो गोल भी कैप्टन रूप सिंह ने किया था पहला गोल। और गोल करने के बाद जर्मन टीम अटैक पे अटैक कर रही थी, और इंटरवल हुआ, इंटरवल में दोनों भाई ने आपस विमर्श किया कि रूप क्या करें, एक ही गोल हुआ है, अगर एक गोल हम बराबर और ऊपर ने हम जीत चलाते तो जर्मन बराबर कर लेंगे और हमारी टीम हार सकती है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम नंगे पैर खेलेंगे, और उन्होंने दोनों भाइयों ने अपने जूते उतारे हैं 36 में और नंगे पैर खेलना शुरू किया। जैसे ही जूते उतार के खेलना शुरू किया, उनके पैर में ग्रिप आनी शुरू हुई, और वो मैच जब हम जीते हैं 8-1 से, हिटलर के बीच में ही जो बाबूजी ने बताया, हिटलर मैच छोड़ के निकल गया था, अपनी टीम को हारता हुआ नहीं देख सका वो।
हॉकी के जाने माने अंपायर ज्ञान सिंह कहा करते थे कि उन्होंने रूप सिंह के अलावा किसी को लेफ्ट इन पर खेलते हुए, लेफ्ट आउट के पास पर गोल करते हुए नहीं देखा। 1932 ओलंपिक खेलों में अमेरिका के खिलाफ रूप सिंह ने 12 गोल किए थे। अशोक कुमार बताते हैं कि हॉकी के बारीक पक्ष उन्होंने अपने पिता ध्यानचंद से नहीं बल्कि अपने चाचा रूप सिंह से सीखे थे।
तो उन्होंने मेरे को एक लाइन जरूर बोली थी जो आज तक मुझे याद है कि खिलाड़ी वो है जो खेल के अंदर मार ना खाए, चोट ना खाए, क्योंकि अगर आप अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छा खेल रहे हैं और आपको चोट लग जाए तो आपकी टीम पर असर पड़ता है, टीम नहीं खेल पाती। और वो चीज के लिए उन्होंने तजुर्बा ये बताया कि आप अगेंस्ट का खिलाड़ी जो आपके पास मारने के लिए आ रहा है उसके करीब में चले जाओ बिल्कुल। और वो चीज मैंने अपने पल्ले बांधी, तो मुझे चाचा रूप सिंह से जो मुझे एक चीज मिली थी वो ये, और मैंने उस चीज को निभाया और मुझे उसे वाकई में कभी चोट लगने का मौका नहीं मिला। उन्होंने मुझे जरूर कुछ बातें हिदायत के तौर पर दी कि तुम बॉल को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर रखो, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना सीखो, अपने साथी खिलाड़ी को ऐसे मौके में पास दो जहां पर वो गोल कर सके। क्योंकि ध्यानचंद से पूछा कि दादा आप इतने बड़े खिलाड़ी कैसे बन गए, तो उन्होंने एक सीधा सा लाइन कही कि मेरे साथी खिलाड़ी मुझे इतना अच्छा पास देते थे कि मुझे गोल करने के अलावा कुछ होता ही नहीं था। उसके अलावा वो कमी मेरे अंदर थी कि इतने सब कुछ करने के बाद गोल नहीं करना या नहीं करवाना, तो उसके बारे में वो मुझे सलाह देते थे कि आप गोल करें या करवाएं।
रूप सिंह की खासियत थी कि वो अंपायर के किसी फैसले पर बहस नहीं करते थे। 1936 में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद बर्लिन में एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा गया। 2012 के लंदन ओलंपिक में भी ध्यानचंद और लेस्ली क्लाडियस के साथ साथ रूप सिंह के नाम पर भी एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखा गया।
चाचा रूप सिंह साहब बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, उनका तो एक छोटा सा परिवार था, ग्वालियर में रहते थे। हाँ, कभी जब झांसी आते थे और बाऊजी, चाचा रूप सिंह और हमारे बड़े ताऊ जी जो कैप्टन ध्यानचंद साहब के बड़े भाई थे, मूल सिंह जी, ये तीन भाई थे, ये जब आते थे तो घर में जब शाम के टाइम हुआ तो बाऊजी चुपके से एक छोटा सा गिलास उनका ड्रिंक का बनाते थे अपने हाथ से, और हमको किसी भी बड़े लड़के को बोलते थे जाओ रूप को देकर आओ। ये मतलब अपने हाथ से अपने सामने बाऊजी का प्यार जो होता ना, है तो प्यार, लेकिन वो उस टाइम इस तरह ही नहीं कि आज जैसे हक कर लिया, हमने गले मिल लिए और हंसी मजाक चल रहा, ऐसा नहीं। वो एक डिफरेंस किए हुए, एक अलग से अपना प्यार दिखाना उनको एक ग्लास ड्रिंक के अंदर, और उनके खाने के लिए पूछना कि इनको खाना दिया कि नहीं दिया, उनको खाना देकर आओ, ये बातें थी जिसमें उन्होंने अपने आप को हमारे इन दोनों भाइयों ने, जो हमारे चाचा और रूप सिंह साहब और कैप्टन ध्यानचंद के अंदर मैंने मोहब्बत देखी, प्यार देखी, वो अजब ही था।
चलो रियो, आप सुन रहे हैं बीबीसी और आकाशवाणी की पेशकश रेहान फजल के साथ, 1936 ओलंपिक खेलों को ध्यानचंद के अलावा याद किया जाएगा अमेरिका के अश्वेत धावक जेसी ओवेंस के 4 स्वर्ण पदकों की वजह से।
Jesse Owens was the smoothest athlete I've ever seen. He ran like water flowing.
There was never before or after as a man who combined beauty of performance with highest standards. And to watch him was a delight.
After the fanfares of the Olympic opening comes the most amazing performance by America's black streak, Jesse Owens.
I think of the tremendous crowds. I think of the thing that I had wanted to do more than anything else in the world, and that was to be able to win the 100.
मैं वहां मौजूद भारी भीड़ के बारे में सोचता हूं। मैं उन चीजों के बारे में सोचता हूं जिन्हें मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा करना चाहता था। उनमें से एक था 100 मीटर दौड़ में ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल करना। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं ऐसा कर सका।
ये थे महान एथलीट जेसी ओवेंस, जिन्होंने 1964 में बीबीसी से बात करते हुए ये शब्द कहे थे। उनका असली नाम जेम्स क्लीवलैंड ओवेंस था। वो 1913 में अलाबामा में पैदा हुए थे। रूथ ओवेंस जेसी ओवेंस की पत्नी थी।
I met Jesse in elementary school. Jesse spoke rather fast at times, and the teacher, she asked him what was his name. He said JC, like quickie. And she thought he said Jesse.
मेरी जेसी से मुलाकात प्रारंभिक स्कूल में हुई थी। जेसी बहुत तेज तेज बोला करते थे। जब अध्यापिका ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने इतनी तेजी से अपना नाम बताया कि उनकी समझ में कुछ नहीं आया। उनको लगा कि वो कह रहे हैं जेसी। तब से उनका नाम जेसी पड़ गया। वो उसी कक्षा में पढ़ते थे जिसमें मेरी बहन पढ़ा करती थी। वो अक्सर मेरे लिए कागज पर कुछ कुछ लिखा करते थे और मेरी बहन के जरिए मुझ तक पहुँचाया करते थे। इस तरह हम लोग एक दूसरे के नज़दीक आए। मुझे तभी लग गया था कि जेसी में कुछ खास है।
Like the rest of the world, the US is preparing for the Olympic Games. In the 100 meters, it's Jesse Owens, the brown flash from Ohio, running away with the race. Again in the long jump, it's Jesse Owens, leaping 26 feet 3 inches.
जेसी ने पहले 100 मीटर की दौड़ 10.3 सेकंड में जीती। उसके बाद उन्होंने लंबी कूद और 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले किसी अमरीकी ने एक ओलंपिक में 4 स्वर्ण पदक नहीं जीते थे।
Jesse Owens in the 100 meter. The world's most superb runner makes the others look as if they're walking as he wins the final and equals the world's record time. This and his later victory in the long jump may well be the athletic performances of the century.
He ran like water flowing.
वो इस तरह दौड़े जैसे पानी बह रहा हो।
जेसी ओवेंस की टीम के एक सदस्य थे मार्टी क्लिकमैन, जो एक अमरीकी यहूदी भी थे।
I judge athletes by their superiority over the rest of the field.
मैं किसी भी एथलीट का आकलन इस बात से करता हूं कि वो बाकी लोगों से कितना बेहतर है। जैसे कि क्लास के बारे में किसी को कोई शक नहीं था।
जर्मन डिकैथलीट योगी मेयर को यहूदी होने की वजह से जर्मन टीम में जगह नहीं मिल पाई थी, लेकिन वो ओलंपिक स्टेडियम का टिकट पाने में सफल हो गए थे।
To watch him was a delight, and he was a very modest person. And the way how he behaved and how he smiled.
उनको दौड़ते हुए देखना एक सुखद अनुभूति थी। वो बहुत ही शालीन व्यक्ति थे। जिस तरह से उनका बर्ताव था, जिस तरह वो मुस्कुराते थे, जर्मन दर्शकों के बीच वो इतने लोकप्रिय हो गए थे कि लोग उन्हें देखते ही जैसी 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 चिल्लाने लगते थे।
मेयर को अभी तक याद है।
The German Lutz Long came and helped him to adjust his mark, and they helped each other.
मुझे याद है लंबी कूद की स्पर्धा में मैं दूसरी या तीसरी लाइन में बैठा हुआ था, जब जेसी ओवेंस कूदने से पहले अपना मार्क मिस कर गए थे, तो जर्मन लॉन्ग जंपर लुट्स लैंग ने उनके पास आकर उनका मार्क एडजस्ट करने में उनकी मदद की। मैं देख रहा था कि ये दोनों एथलीट एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन तब भी एक दूसरे की मदद कर रहे थे। स्टेडियम के अंदर जो कुछ हो रहा था उस पर नाट्सी पार्टी का कोई नियंत्रण नहीं रह गया था। खेल में जरूर कुछ ऐसा था जो नस्लवाद और विशुद्धता की परिकल्पना से कहीं अधिक बलवती था।
ग्लिकमैन बताते हैं कि ओवेंस जर्मन दर्शकों के बीच इतने लोकप्रिय थे कि उन्हें एक गुप्त द्वार से ओलंपिक स्टेडियम में ले जाया जाता था ताकि प्रशंसकों की भीड़ उन्हें घेर न ले।
Many times during the course of his various competitions, you could hear the chant through the stands of thousands of people raising their voices and repeating in unison,
कई बार उनके मुकाबलों के दौरान आप लोगों को एक साथ चिल्लाते सुन सकते थे। स्टेडियम में बैठे हजारों लोग एक स्वर में आवाज लगाते थे, ओवेंस, ओवेंस, ओवेंस। बर्लिन में सिर्फ ओवेंस को ही इस तरह की वाहवाही मिली थी।
जैसी ओवेंस की हीरो की तरह अमेरिका वापसी हुई थी। रिटायर होने के बाद उन्होंने कई व्यवसायों में अपना हाथ आजमाया, लेकिन उनमें किसी में कामयाबी नहीं मिली। एक समय ऐसा भी आया जब वो पैसा कमाने के लिए घोड़े से दौड़ करने के लिए राजी हो गए। 1980 में सिर्फ 66 साल की उम्र में जेसी ओवेंस का देहांत हो गया। आज तक उन्हें सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ ओलंपियन में से एक माना जाता है।
You think in terms of the years of hard work and then you look at the crowd and you hear the cheers of the crowd and you hear your national anthem of your country and you see your flag.
आप सोचते हैं सालों की कड़ी मेहनत के बारे में, फिर आप भीड़ की तरफ देखते हैं, उसके शोर को सुनते हैं, फिर आप अपने देश के राष्ट्रगान को सुनते हैं। जब आपके देश का झंडा ऊपर जा रहा होता है, फिर जब आप स्वर्ण पदक ले रहे होते हैं, तो आप अपने आप से कहते हैं, मैं ओलंपिक चैंपियन हूं, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ।
और अब रियो ओलंपिक्स में भारत की संभावनाएं। 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत के दो पहलवान सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त पदक लाए थे। रियो ओलंपिक में अब तक 6 भारतीय पहलवानों ने क्वालिफाई किया है। योगेश्वर दत्त उनमें से एक है। मैं उनके ट्रेनिंग कैंप गया तो वो सुबह सुबह वॉलीबॉल मैच खेल रहे थे। मैच के बाद मैंने उनसे पूछा कि अस्ताना में हुआ क्वालिफाइंग मुकाबला कितना कड़ा था।
कंपटीशन काफी टफ था और मैं पिछली वर्ल्ड चैंपियनशिप नी की वजह से मैं नहीं खेल पाया था, क्योंकि मेरे पिछले साल नी के 3 ऑपरेशन हुए थे। यह कि अब दबाव था काफी, क्योंकि पूरे देशवासियों को मेरे पे उम्मीद थी और सबकी नजरें मुझ पे थी, ऐसे टाइम में दबाव होता है। बस यही था कि मैं यही सोच रहा था कि इस बार मेरे को क्वालिफाई करना है, क्योंकि उसके बाद फिर टाइम कम होता चला जाता है। मेरा जब पहला मुकाबला था जो वो डीपीआर कोरिया के साथ था, दूसरा वियतनाम के साथ था, और जो सेमीफाइनल बाउट थी वो कोरिया के साथ थी। ये कि मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, फिटनेस लेवल बहुत अच्छा था।
सबसे मुश्किल मुकाबला कौन सा था?
देखिए ऐसे उसमें सभी मुश्किल होते हैं। मेरा पहला मुकाबला प्री क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल कड़े थे, क्योंकि डीपीआर कोरिया कोरिया दोनों अच्छे पहलवान थे। वियतनाम का था वो थोड़ा मेरा मतलब उसके साथ इतना वो टेंशन नहीं थी मेरे को, पर यही है कि किस पहलवान कोई भी उसको अड़के में लेना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो प्रेशर था वो सेमीफाइनल बाउट पर, क्योंकि अगर हम जीतते हैं तो क्वालिफाई करते हैं, इसलिए सेमीफाइनल में बहुत ज़्यादा दबाव था। पर जब मैंने पहले सोचा था कि नहीं साथ खड़ा होगा, मतलब मैंने उनको एक तरफा मुकाबले में हराया, डीपीआर कोरिया को 7-2 से और कोरिया को 7-0 से, और जो वियतनाम का था उसको मैंने वाई फाल जीत किया।
आपने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन अभी भी 2.5 महीने बचे हैं। कहाँ कहाँ ट्रेनिंग करने का प्लान है आपका?
1 अगस्त में ओलंपिक है और 1 महीने का प्रैक्टिस करते हमारा शेड्यूल वो जोड़ जेम रहेगा। उसके बाद पहले रशिया में है, उसके बाद फिर जो ओलंपिक से पहले 3 या 4 वीक पहले हम सोच रहे हैं कि अमेरिका में अपना कैंप लगाएं, क्योंकि वहीं से उधर की उधर फिर हम रियो जाएंगे। टाइम का काफ़ी डिफरेंस है, थोड़ा मौसम के अनुकूल भी उधर सेट होना पड़ेगा, इसलिए ओलंपिक से पहले तो यूएसए में होगा, पर उससे पहले रशिया में। अब ये प्रोग्राम हो रहा, पहले जॉर्जिया, फिर रशिया, फिर यूएसए।
और अब आजकल जब आप ट्रेन कर रहे हैं, क्या दिनचर्या होती है आपकी, किस तरह से शुरू होता है आपका दिन?
मैं बता दूं कि 2012 में जब मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया ओलंपिक में, तब से मैंने सोचा था कि नहीं गोल्ड चाहिए ओलंपिक में, और तब से मेरा पूरा फोकस यह है कि देश के लिए गोल्ड जीतना है। बीच में इंजरी भी हुई 2013 भी, मैं पूरा साल नहीं इंजरी की वजह से कहीं कॉम्पिटिशन नहीं खेल पाया, पूरा साल इंजरी नहीं रही। उसके बाद फिर अभी 2015 में 3 ऑपरेशन हुए मेरे नी के, पर मेरा अपने प्रैक्टिस में कभी हुआ नहीं कि मैं अगर मैच भी नहीं करता तो जिम वगैरह जो अभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को करता रहता था। अभी भी ये है कि हम सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, हमारा जो क्लास लगती है वो 8 बजे लगती है, 8 से हमें 11 बजे तक ट्रेनिंग करते हैं। 3 घंटे सुबह होती है और 3 घंटे शाम को होती है, और हमारा पूरा फोकस रहता है कुश्ती पे, अपनी ट्रेनिंग पे। हमारा कहीं घूमना फिरना भी नहीं होता, इतनी बस हमारा मेन दवाई ये है कि हम यही रेस्ट करें और सुबह शाम ट्रेनिंग करें। हमारी 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को ट्रेनिंग होती है।
और ट्रेनिंग पे ज़्यादा जोर प्रैक्टिस पे होता है या अभ्यास पे? इस लेवल पे क्या आपको कुछ सीखने की ज़रूरत होती
है? बिल्कुल बिल्कुल, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। सीखते तो मतलब मैं मानता हूँ कि कभी भी 100% पूरा वो नहीं होता, इसलिए हम सीखते रहते हैं जो कमी होती है, क्योंकि कॉम्पिटिशन में कमियां होती रहती हैं। अब पहले भी खेले हैं कि जो कमियां हमें उसको उन पे और सुधार करें, हमारा वीक पॉइंट क्या है और जो हमारा मजबूत पॉइंट और मजबूत करें, क्योंकि सभी पहलवान पता कर लेते हैं जैसे कौन पहलवान क्या टैकिंग लगाता, उसमें थोड़ा थोड़ी चेंजिंग भी करनी पड़ती है। बस यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखना और समझदारी की ज़रूरत है, और वो टाइम के साथ भी आती है, एक अनुभव टाइम के साथ भी आता है। जैसे जितना अनुभव आज मेरे को आई उतना 4 साल या 8 साल पहले, या पहला ओलंपिक 2004 में तब नहीं था, पर आज अनुभव, पर अभी अनुभव और ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इतने ओलंपिक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन होता है और सबका सपना होता है ओलंपिक चैंपियन बनने का, और सभी चाहते हैं अपना 100% दें, और हम भी चाहते हैं कि हम भी अपना 100% दें उसमें।
पहले आप 60 किलोग्राम वर्ग में लड़ा करते थे, इस बार आप 65 में हैं, कुछ फर्क पड़ा है, कुछ लेवल ऑफ कंपटीशन कुछ ज़्यादा बढ़ा है?
देखिए बिल्कुल, और मैं बता दूं आपको कि मैं 2004 ओलंपिक, पहला ओलंपिक 55 kg में खेला था, 55 kg में खेला था, उसके बाद 2008 और 2012 का मैं 60 kg में खेला। बस ये है कि मेरा अभी जैसे अब 65 में हूँ मैं, थोड़ा पावर बढ़ानी पड़ती है, नए वजन में आते हैं तो नए पहलवान मिलते हैं, नया कॉम्पिटिशन होता है, और हम ऊपर वेट में जाएंगे तो हमें ताकत की जरूरत भी पड़ेगी। कॉम्पिटिशन तो बढ़ा, पर मेरे लिए मेरा ये मतलब 65 बहुत अच्छा है। मैंने अभी तक 5 कॉम्पिटिशन खेले हैं, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, और 2 इटली टूर्नामेंट से अभी एक क्वालिफाई राउंड खेला है, और 5 में गोल्ड जीता, इसलिए मेरे लिए वेट बहुत अच्छा है।
रियो में आपका मुकाबला किन लोगों से होगा, टॉप पहलवान कौन कौन से हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कि आप उनसे भिड़ेंगे?
देखिए रियो में अभी 19 पहलवान क्वालिफाई करेंगे, और विश्व के जो पहले 19 पहलवान हैं तगड़े वो होंगे, सभी अच्छे हैं, ये नहीं बोल सकते कि कोई कमज़ोर है। बस ये है कि मैं हमारा जो ज़्यादा अभी जो इस साल 2015 में जो वर्ल्ड चैंपियन बना इटली का पहलवान, रशिया है, ईरान है, जापान है, उज्बेकिस्तान है, मतलब काफ़ी पहलवान है। बस ये है कि हमें वो दिन अपना बनाना है, जिस दिन हमारी कुश्ती होगी कि उस दिन हमारा हो, इसलिए पहलवान सभी बराबर के हैं, कॉम्पिटिशन सबके साथ अच्छा होगा, पर हम चाहते हैं कि जिस दिन हमारी कुश्ती हो दिन हमारा हो।
ये थे योगेश्वर दत्त। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, इसी दिन इसी समय चलो रियो में। रेहान फदल को दीजिए इजाजत, नमस्कार। रियो डी जानेरो।